ओम शांति। तो आज से एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। हमारे पूर्वज जो यज्ञ की आधार मूर्तियां हैं, जिनकी तपस्या के बल पर यज्ञ इस मुकाम पर पहुंचा है, उनका जीवन चरित्र कैसे अनेकों के जीवन को चरित्रवान बना गया, उनका आदर्श में जीवन कैसे प्रेरण स्रोत रहा और कैसे हम उसको आत्मसात करें स्वयं में, अपने जीवन को भी उनके जीवन जैसा कैसे बनाएं। तो आज से सीरीज चालू होगी हमारे पूर्वज, यज्ञ के जो भी पूर्वज हैं उनके जीवन चरित्र पर टर्न बाय टर्न, हर एक पूर्वज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए आज से एक नई सीरीज चालू होगी। तो आज जो पूर्वज हमारे आदरणीय भोली दादी जी, जिनका स्वयं भगवान मुरलियों में बखान करते हैं, महिमा करते हैं, इस यज्ञ में जितनी भी आत्माएं हुई हैं, हर एक आत्मा का विशेष पार्ट रहा है, लेकिन फिर भी यज्ञ के स्थापना काल में जिन आत्माओं ने एक दक से स्वयं को यज्ञ में समर्पित कर दिया और वो जो स्थापना काल था उस दौरान सिंध हैदराबाद, जो कि सिंधी समाज के लोग बहुत फैशनेबल होते हैं, उस दौरान भगवान के ऊपर स्वयं को अर्पित कर देना और सभी एकदम संपन्न घरानों के, जिन्होंने आगे पीछे ना देखते हुए स्वयं को भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया, तो उनके जीवन से हमें प्रेरणाएं लेनी है, कुछ स्वयं को परिवर्तन करने का अंदर एक दृढ़ संकल्प लेना है। ना केवल उनके जीवन चरित्र को हमें याद करना है, बल्कि उनके चरित्र को स्वयं में लाने का हमको प्रयास करना है, ताकि हमारा पुरुषार्थ भी सहज रूप से आगे बढ़ सके। दादी भोली जी जो के भंडारा संभालते थे, जिनको बाबा ने जिम्मेवारी दी थी, बहुत सारी विशेषताओं का बाबा वर्णन करते हैं और बहुत सारों ने भोली जी दादी को देखा भी होगा, हमें भी 2007 तक 99 से 2007 तक देखने का सौभाग्य मिला, बहुत सारी बातें सीखने को मिली, क्योंकि अधिकतर बातें जरूरी नहीं है कि हम ज्ञान सुन के सीखे, कुछ एक बातें क्या, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी की चाल चलन से, किसी की बोल से, किसी की व्यवहारिकता से सीख जाते हैं, और वो जो चीजें होती हैं उनको देख के या इस तरह की व्यवहारिकता से स्वयं को परिवर्तन लाना बहुत आसान होता है। ज्ञान बुद्धि से सीख भी सकता है, लेकिन जो अनुभव है, जो हमारा आपस में मेल मिलाप होता है, जो हम लेन देन करते हैं, वो कभी भूलता नहीं है। तो दादी भोली जी जो भंडारे को संभालती थी, बहुत सारी विशेषताएं रही हैं उनकी, एक एक विशेषता को जीवन में उतारने के लिए बहुत सहज रूप से हमें वो प्रेरणा देती रही। बहुत बारी हम मुरलियों में सुनते हैं दादी जी का, जब बाबा नाम लेते हैं दादी बोली कि हमेशा सबको संतुष्ट करती थी, और बहुत सारी बातें देखी जाए तो जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि चारों सब्जेक्ट इक्वल होने चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, लेकिन दादी जी भोली जी के जीवन में देखा, हमें बाहर से तो दिखाई देता था कि सेवा में उपस्थित है वो, लेकिन उनकी सेवा में ही ज्ञान योग धारणा समाई हुई थी, उनकी सेवा योग युक्त थी। हम देखते थे सवेरे से लेकर शाम तक, उनके चेहरे से लगता था जैसे वो उपराम अवस्था है उनकी। हमें प्रयास करना पड़ता है बॉडी से डिटैच होने का, अशरीरी बनने का, दृढ़ करने का। हालांकि बोली दादी तो मुरली सुनने उधर भी नहीं आते थे, वो उनकी मुरली भंडारे में सुनते थे, वहीं सेवा करते करते उनका योग भी चलता था। योग के समय वही होते थे, मुरली के समय वही होते थे। तो सवेरे से लेकर शाम तक हम देखते थे जहां भी नया किचन बना ऊपर, जिसको पेशेंट किचन कहा जाता है। पहले तो ये उसका स्वरूप ही अलग होता था, वहां जहां सिगड़ियां रखी होती थी, काला कोयला पड़ा होता था। हम भी कई बार वहां गए हुए हैं। और पहले जो जो मेहमान आते हैं उनके लिए जो भोजन बनाने की व्यवस्था होती थी, तो पहले भोली दादी को कहा जाता था, तो कई बार हम भी जाते थे कहने के लिए। तो दादी बहुत प्यार से, स्नेह से देखते हैं, इतने पुराने दादी और हम नए नए हैं अभी। कोई भी जाता था तो पूरी उसको सम्मान से, स्नेह से उसका पूरा सुनते थे। ऐसा नहीं कोई ऐसे को इग्नोर कर देगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पूरी पालना देती है, पूरा सुनती है उसकी, पूरा देखरेख करती है, उसका लालन पालन करती है, ऐसे ही भोली दादी छोटी छोटी बात को भी अच्छी तरह से सुनते थे। कितने मेहमान आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, लेट हो जाएंगे तो आप बता देना, तब भी भोली दादी बैठे रहते थे। ऐसे नहीं मेहमान लेट आए तो मैं क्यों बैठूंगी इधर, नहीं। तो छोटी छोटी बातों पर उनकी उनका पूरा ध्यान रहता था। कोई भी चीज अगर चाहिए होती थी तो दादी कभी मना नहीं करते थे। अगर थोड़ी सी चीज चाहिए, मान लो घी चाहिए, तो एक दो बार हमने भी करके देखा हुआ है, तो दादी कहती थी युक्ति से, मैं तुमको दे रही हूं उसको बताना नहीं तुम। और जो दूसरा जाता था देने लेने के लिए उसको भी दे देती थी, बोले तुम उसको नहीं बताना। जैसे माँ एक अपने बच्चों को कैसे संतुष्ट करती है, तो जो एक घरेलू माहौल होता था वो वास्तव में देखने को यहां मिला कि घर परिवार में आपस में कैसे प्यार होता है, माँ कैसे बच्चों को देखरेख करती है, बच्चों की कैसे लालन पालन करती है। तो भोली दादी में वो देखा हमने। ददीची ऋषि का जो गायन है शास्त्रों, वास्तव में वो भोली दादी में देखने को मिला। संकल्प, स्मय, श्वास, कर्म, उनका यज्ञ सेवा में पूरी तरह से सुहारा, पूरी तरह से समर्पित बुद्धि रहे। सबसे पहले आते थे किचन में और रात को सबसे लास्ट में जाते थे। केवल हम क्योंकि अभी तो देखते हैं रात को 10 बजे आंगन में कोई कोई दिखता था, लेकिन पहले 10:30 बजे तक भी अच्छी चहल पहल रहती थी, बहुत तपस्या चलती थी। क्योंकि उस समय तो इतने संसाधन भी नहीं थे और उस समय दादियां बहुत थी, तो दादी आंगन में बैठी रहती थी, तो वास्तव में बदुवन वाले भी आगे पीछे घूमते रहते थे, क्योंकि दादियों का स्नेह था, बहुत सारी यज्ञ की हिस्ट्री सुनाते रहते थे। तो कई बार हमको भी मौका मिला कि भोली दादी का हाथ पकड़े बाह से किचन से, फिर उनको रूम में छोड़ना, जहां ट्रेनिंग सेंटर में। तो भोली दादी और सती दादी ये दो बहनें थी, भोली दादी उनमें बड़े थे, और जब यज्ञ में आए तो उनके साथ में जो मीरा बहन जी हैं अभी मधुबन में, तो 6 महीने के थे वो, उनके साथ यहां आए वो। तो उन्होंने कैसे समर्पित किया, एक 6 महीने की कन्या है और इतना पीछे संपन्न परिवार है और कुछ देखा नहीं है, तुरंत यज्ञ में समर्पित हो गए, कुछ देखा नहीं है। तो यहां आने के बाद उनका जो सेवा का रहा, इतने बड़े भंडारे को चलाना, और उसमें भंडारे में भी देखते थे हम कई बार भोली दादी बड़े दादी के पास आके बैठते थे, प्रोग्राम लेते थे कल के भोजन का, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं भंडारे की इंचार्ज, मुझे बाबा ने बना दिया तो मैं जो कुछ करूंगी वो नहीं, एकदम जैसे निमित समर्पण भाव से, एकदम जैसे बहुत नम्रता, कभी भी उनमें हमने अहंकार बिल्कुल भी नहीं देखा। जैसे कल परसों चर्चा कर रहे थे कि हम कल्प वृक्ष की जड़े हैं, वास्तव में उनको हमने देखा कि जड़ें कभी प्रत्यक्ष होने का संकल्प नहीं करती हैं। तो वो भोली दादी में देखा, कभी भी उनके मन में स्टेज पर आने का संकल्प नहीं, तो भगवान जिनकी महिमा कर रहा है वो थोड़ा भी 2-4 शब्द बोल रहे उसको कितना मन में आया कि भगवान मुझे याद करता है, लेकिन कभी भी उन्होंने आगे आने का संकल्प ऐसे किया ही नहीं। अर्थात उनकी सेवा में ही सारा ज्ञान योग धारणा चारों सब्जेक्ट समाये हुए थे। वो एक बनी बनाई मूर्ति थी। संसार में तो गायन होता है जो संसार के लिए कुछ करते हैं, संसार में जब जब अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए तो अनेक प्रकार की अनेक आत्माओं ने अनेक महान विभूतियों ने अपना सर्वस्व भी अर्पित किया। लेकिन इस यज्ञ इतिहास में कल्प के अंत में जो पूरा संसार परिवर्तन होने जा रहा है, तो यही वो वास्तव में वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना शौर्य बलिदान जो भी साहस से पूरा यज्ञ में समर्पित कर दिया। नहीं तो उस समय का समाज, सिंधी समाज में बताया ना, फैशनेबल, इतना सब कुछ त्याग दिया एक धक से। वास्तव में त्याग का भी, त्याग जो परिभाषा देखने को मिलती है, तो वास्तव में इन आत्माओं का वो गायन है कि त्याग का भी त्याग रहा। नहीं तो अगर हम त्याग करते हैं, जैसे हम कभी कई बार सोचते हैं कि अगर कोई हमारे जीवन का अनुभव पूछता है तो हम सुनाते हैं उनको, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अनुभव कहां सुनाया, दूसरे उनके जीवन का अनुभव सुना रहे हैं। नहीं तो अनुभव सुनाने में भी कई बार होता ना कि हम भी इतनी समस्याएं क्रॉस करके आए हैं, हम भी कम थोड़े नहीं है। सूक्ष्म में भले हम बीच में मुख से निकलता है कि बाबा हमारा साथी था, बाबा हमें मदद कर रहा था, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से अंदर में संकल्प तो रहता है ना, देखो हमारे में भी कितनी हिम्मत है, हम भी ये सब चीजें पार करके आए हैं। लेकिन उन आत्माओं ने ये जिक्र नहीं किया। वास्तव में इसको कहा जाएगा त्याग का भी त्याग, ऐसा त्याग किया। और वैराग्य की जो हम वैराग्य स्वयं में लाने के लिए प्रयास करते हैं, ढूंढते हैं कौन सा ज्ञान किस में अप्लाई करना है, जबकि उन यज्ञ की आधार मूर्तियों ने वैराग्य को लाने के लिए ज्ञान का इतना प्रयोग नहीं किया, उसमें ज्ञान था ही कहां। तो वास्तव में जो धधकता और वैराग्य है वो वास्तव में उन आत्माओं का है। एक धक से ही सारा कुछ छोड़ दिया, संसार की तरफ मुख देखा ही नहीं, जो 14 साल भट्ठी की है संसार के प्रति कोई संकल्प ही नहीं आया, जबकि हमके संसार के प्रति सोचना पड़ता है, यहां तो दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, ये संसार दुखदायी है, सब दुख देने वाले हैं, लेकिन उन आत्माओं ने कुछ सोचा नहीं ऐसा है। एक दख से भगवान के ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने अपने जीवन को इस यज्ञ की वेदी पर पूरा समर्पित कर दिया। तो उन महान आत्माओं का जो जीवन चरित्र है, एक एक जीवन चरित्र हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला है। इसलिए हमें उसमें से क्या लेना है वो हमें स्वयं को जांच करना है कि वास्तविक में हमारा जीवन ऐसा चल रहा है, उसी अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। उस समय भी बोली दादी जब थे तो उनके जो साथ में या सेवा में बहुत सारे बच्चे आते थे, तो बहुत सारी बातें हैं जो अगर कोई सामने से अगर कुछ बोल भी देता था बहुत नम्रता पूर्वक उनको भूल जाते थे वो, अगर सामने वाले कुछ बोल दिया तो अपने मन में नहीं रखते थे। ऐसे ही एक प्रसंग है, एक कन्या थी तो दादी से थोड़ा अनबन होगी होगी, लड़ पड़ी होगी, लेकिन फिर वो कन्या थोड़ी देर बाद फिर आती है शाम के टाइम में कि दादी जी तुम मुझे चूरमा नहीं खिलाओगे आप, क्योंकि उसको चूरमा और घी जो दादी देती थी कौन देगा फिर। तो दादी ने उसके मन उसकी बात को भी अपने मन में नहीं रखा, बल्कि पूरी तरह से दादी कहती मैं कहां मना कर रही हूं, मैं तो हुई तुम्हारे के लिए, मुझे बाबा ने सेवा में रखा है ही आपके लिए रखा हुआ है। तो वो छोटी छोटी बातें भी मन में नहीं रखी है, और हमें अगर कोई छोटी सी बात कह देता तो लंबे समय तक कैसे मन में रहती है, वो कैसे हमारा मूड ऑफ हो जाता है। कोई भी अगर कुछ हमें इशारा देता है हमारी कमी कमजोरी का, और कमी कमजोरी हमको होती भी है, लेकिन वास्तव में अभिमान के इतना होता है कि उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन उन दादियों ने छोटी छोटी बातों को भी अपने मन में न रखते हुए पूरे इतने बड़े संगठन को एकता पूर्वक चलाने में यहां तक पहुंचाया। वास्तव में उनकी इस तपस्या के बल पर ही, उनकी एकता के बल पर ही इस यज्ञ का जो इतना बड़ा वृक्ष विस्तार को पाया है, जो पूरे संसार में शतरछाया बनकर अनेक आत्माओं की पालना कर रहा है, ये वास्तव में उनकी तपस्या की बदौलत ही हम वास्तव में मक्खन खा रहे हैं, बना बनाया मक्खन है। उस समय तो ना इतने संसाधन थे, ना इतना ज्ञान का विस्तार था, ना कोई इतना स्पष्टता थी। उस समय तो बाबा कहते अगली दिवाली आने वाली नहीं है, या स्टार्टिंग में ज्ञान कैसा था, आत्मा अंगूठे मिसल है, कितना सारी अस्पष्टता थी। लेकिन भगवान के प्रति प्यार कितना था उनको, जैसे दिखाते ने मीरा ने को भगवान के लिए, भगवान के प्यार के लिए ज्ञान नहीं पड़ा, उसको अंदर में इतनी भगवान के प्रति इतनी लगन थी, प्यार थी कि भगवान ही उसके ऊपर आकर्षित हो गया। तो उसमें वास्तव में भोली दादी भी ऐसे ही हैं, जिन्होंने को ज्ञान थोड़ा इतना पड़ा, लेकिन मुरली में उनकी महिमा आती है, भगवान स्वयं उनको याद करते हैं, उनके ही जीवन चरित्रों का गायन है। वास्तव में वही अन्नपूर्णा है जो सबको संतुष्ट करती है, तृप्त करती है। तो ऐसी आत्माओं के पद चिन्हों पर चलने के लिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमको भी इनके जीवन चरित्रों को स्वयं में आत्मसात करने का एक मौका मिला है, स्वर्णिम अवसर मिला है। और साथ साथ में देखा बोली दादी यज्ञ के इकोनॉमी, एक एक दाने को जो इस यज्ञ की भाषा में कहा जाता है सफल करते थे। कभी भी उन्होंने देखा हमने किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं गवाया। कोई भी अगर लेट भी आता था, अगर भोजन नहीं भी होता था तो अपना भोजन भी किसी दादी दे देते थे, या किसी को सवेरे जाना होता था, पहले तो इतना विस्तार तो था नहीं शुरू शुरू में, तो जो भी हम यहां से परचेजिंग करने कोई भी जाता था यज्ञ के, तो उनको सवेरे सवेरे भोजन बना के देना, उनका सारी देख रेख करना, और रात को अगर लेट आ रहे हैं तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी रखना है कि वो व्यक्ति अभी आया नहीं है, उसके भोजन की व्यवस्था करनी है, उसको भोजन देने के बाद ही स्वयं सोना। तो वास्तव में ये सच्चा सच्चा त्याग और पालना की प्रतिमूर्ति दादी जी जो हमारे आदर्श मूर्त हैं, यही वास्तव में यही पूर्व जो आधारशिला है जिनकी बदौलत आज सारा यज्ञ इतने संसार में अपने एक इस ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है और सच्ची धारणाओं का। ज्ञान तो संसार में अनेक प्रकार से है, लेकिन संसार को देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति आकर्षित क्यों होता है, क्योंकि चरित्र के ऊपर, जो चरित्र हमारा यहाँ परिवर्तन हुआ है उस चरित्र की बदौलत ही संसार यहाँ आकर्षित हो रहा है। अदरवाइज ज्ञान तो संसार में भी कितना ज्ञान है लेकिन उसको आचरण में लाने की ताकत नहीं है। तो जो यही जो यज्ञ के जो पूर्वज हैं, जिन पूर्वजों की बदौलत यज्ञ इतना विस्तार को पाया है, यज्ञ इतना आगे बढ़ा है, तो उनके हमको पद चिन्हों पर चलने का दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। इसलिए जो भी जीवन चरित्र हैं पूर्वजों के, उनको हम बार बार आत्मसात करें। वैसे भी देखा ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी पढ़ते हैं, उस जीवन कहानी को पढ़ने के बाद जीवन में परिवर्तन करने का कितना दृढ़ संकल्प आता है। दूसरा, ज्ञान मुरलियां इतनी याद नहीं रहेंगी लेकिन जीवन चरित्र याद रहेगा, क्योंकि वो उनके जीवन का एक अनुभव है और बाबा कहते अनुभवी कभी भूलता नहीं है। तो उन अनुभवों को अगर हम बार बार पढ़े, उसको हम स्वयं में लाने का प्रयास करें, तो जीवन में हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमें भगवान भी छोटी छोटी, अगर हमारे से कोई भी अवज्ञा होने वाली है या श्रीमत का उल्लंघन होने वाला है या कहीं हो रहा है, तो हमको समय पर टचिंग कराएगा। जैसे बोली दादी थे बाबा के लिए भोग बनाते थे, तो भोग एक बार लगा दिया तो संदेशी को बाबा ने वापस भेज दिया। संदेशी को वापस भेजा के देखो इसमें नमक नहीं है, तो बोली दादी को बताया गया कि इसमें नमक नहीं है। तो दादी जी ने कहा कि मैं पहले कैसे टेस्ट कर सकती हूँ, तो फिर से संदेश आया कि नहीं आपको इसकी इजाजत है, आप इसको पहले टेस्ट कर सकते थे। अर्थात कहां ना कहां अगर हमारी सूक्ष्म में अगर हम कहीं भूल रहे हैं तो बाबा हम कुछ समय पर टचिंग कराता है। जो भी हमसे अगर गलती होने वाली है तो बाबा पहले से सचेत करता जाए, जागृत कर देता है। तो इस तरीके से हमको इस पर पूरा गौर करना है, इकोनॉमी से पूरे यज्ञ में तन मन धन से समय संबंध संपर्क जो भी हम पूरा समर्पण भाव से इस यज्ञ में स्वयं को, स्वयं के जीवन को उन पूर्वजों की तरह लगा दे, तो ये वास्तव में उनके पद चिन्हों पर चलने का या उनकी कहानियों को पढ़ने का वास्तव में कोई सच्चा अर्थ होगा। नहीं तो अगर हम पढ़ते रहें और उनके जीवन पर नहीं चलें तो उसका कोई इतना औचित्य नहीं है। इसलिए इस यज्ञ में वो महान विभूतियां जिन्होंने अपना तन मन धन आगे पीछे कुछ नहीं देखा और स्वयं को अपने इस यज्ञ में अर्पित कर दिया, जितनी भी समस्याएं, कितने सारे उन्होंने स्तंभ सहे हैं शुरुआत में पवित्रता के कारण या अनेक प्रकार के समाज की समस्या, परिवार की विघन, लेकिन जितनी भी समस्याओं जैसे पहाड़ भी उनके सामने आए लेकिन वो समस्याएं भी चकनाचूर हो गई, वो नहीं डिगे लेकिन समस्याएं उनके आगे हार गई। तो उन्होंने देखो उनको समस्याओं का कभी जिक्र नहीं किया कि हमको इतनी प्रॉब्लम आई एक आई, लेकिन बाबा के एक बल एक भरोसा उसके साथ का अनुभव उसके कारण वो निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें उन पूर्वजों की शिक्षाओं को स्वयं में अमल में लाना है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वज जो जिन्होंने यज्ञ की व्यवस्था को यहां तक पहुंचाया है उसका हम कदर कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम स्वयं के जीवन को अगर उनके अनुरूप नहीं ला रहे हैं तो फिर उनकी जो हमारे प्रति आशाएं हैं, जो बाबा की हमारे प्रति आशाएं हैं संसार को परिवर्तन करने से पूर्व स्वयं के, स्वयं अपने चरित्र से भगवान को प्रत्यक्ष करें, तो वो मूर्तियां जो है जड़ हैं, वो जो एक बिल्कुल गुप्त हैं। तो अभी जो संसार के प्रति जो प्रत्यक्ष रूप में हम सब बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष रूप में तो हमें भी देखकर उन पूर्वजों की लोगों को याद आए, आने वाली आत्माओं को याद है कि इनको भी बनाने वाला कौन है, भगवान के साथ साथ उन पूर्वजों का भी जो अहम योगदान रहा है तो उसको हम हमेशा स्मरण में रखें, विस्मृत ना हो जाए, ताकि हम भी अपने इस जीवन को आगे निरंतर रूप से आगे बढ़ाते रहें। ऐसे इस किताब में है बोली दादी जी के साथ के अनुभव, सूरज भाई के साथ या भोपाल भाई जी के साथ या ज्ञान सौर के सुभाष भाई हैं, बहुत सारे लोगों के अनुभव है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं कि कैसे दादी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे, कभी भी किसी को मना नहीं करते थे, अथक निरंतर सेवादारी, कोई थकावट नहीं उनके चेहरे पर, और जैसी दादी का नाम है भोली वैसा उनके चेहरे पर भोलापन भी दिखाई देता, कोई छल कपट नहीं, एकदम निश्चल प्रेम, कोई उनके मन में इस किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबके प्रति समान रूप से प्यार, वो भगवान के जो चरित्र थे वास्तव में उनके जीवन से वो झलकते थे। तो इन आत्माओं के जो भी जीवन चरित्र हैं, जो भी जीवन कहानियां हैं, उनको हम आत्मसात करते हुए इस पर पूरा चलना है। और कुछ बताना आपको? फिर दादी जी ने कभी किसी से सेवा नहीं ली। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, दादी जी एक बार बीमार हुए थे तो उनको अहमदाबाद ले जाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन दादी जी अहमदाबाद जाने के लिए तैयार नहीं थे, और उनको फिर हिस्ट्री हाल में, और उस समय बाहर जाने के लिए बाबा से छुट्टी लेनी पड़ती थी, तो बाबा से छुट्टी लेने गए तो दादी जी कहते मैं अहमदाबाद में नहीं जाऊंगी, तो बोला बच्चे ठीक है तुमको नहीं भेजेंगे अहमदाबाद, और बाबा ने उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरा और सारी बीमारियां खत्म हो गई। ये भगवान का जादू था, ये 20 बुक में ये प्रसंग पढ़ सकते हैं। और लास्ट में भी जब अंतिम समय उन्होंने अपने देह का त्याग किया तो भी ज्यादा सेवा नहीं ली, तो भी यहां से ग्लोबल गए, तो वहां इसमें किताब में बताया गया है वहां देवू भाई को दादी जी कहते कि देवू मुझे अहमदाबाद में नहीं जाना है, तो बोला नहीं भाई दादी गए और आए तुरंत आ जाएंगे वापस, लेकिन वो उसी रात उन्होंने देह का त्याग कर दिया। तो इन आत्माओं ने अंत समय भी सेवा नहीं बल्कि सेवा दी ही दी है, तो माना एक लेने की भावना भी उनके मन में नहीं रही, देने की भावना हमेशा देना है देना है देना है। तो जो दातापन के बच्चे जो संस्कार वास्तव में इन आत्माओं में वो सहज रूप से देखे गए। फिर दादी जी को कभी नाराज होते नहीं देखा, हमने भी देखा कई बार दादी कभी नाराज नहीं हुए, वही मधुबन वाले जाते थे तो सिगड़ियां पड़ी होती थी, किसी को कुछ अगर बनाना है तो बना लेते, कभी भी दादी उसमें आना कानी नहीं करते, कोई भी चीज चाहिए थी दादी जी से ले लेते थे और बड़े प्यार से बहा लेते थे सिगड़ियां, वो काला काला जो धुआं होता था, और वास्तव में बहुत सारी चीजें और भी उस प्रसंग से जुड़ी हैं, उसमें मधुबन वाले अगर कुछ बनाते थे तो बड़े दादी आ जाते थे उधर से, तो उसमें वो देखने वाले सीन होते थे बहुत अच्छे सीन। एक तो रिसेंटली सीन है उसमें, तो ये रतमुन दादी के टाइम का ही है, तो उसमें एक भाई था तो वो कुछ बनाना था उनको, तो कढ़ाई की सफाई कर रहा था वो, तो दादी जी उधर से आगे, उसने देखा नहीं क्या हो रहा है, दादी जी पीछे आगे खड़ी होगी, तो वो कढ़ाई की सफाई कर रहा है कुछ बनाने के लिए, तो दादी जी कहते क्या कर रहे तुम, बोला दादी कोई कढ़ाई ऐसे रखे कि मैं उसकी धुलाई कर रहा हूँ, ये नहीं बोला मैं बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, बोला कढ़ाई उन्हें ऐसे जूठी रख गया मैं उसकी धुलाई कर रहा हूँ। और बड़े दादी जी आते थे तो उस समय अगर कोई कुछ बनाता था तो दादी तुरंत आगे, अभी आपको आगे खड़ी होगी पीछे तुरंत खड़ी होगी, तो ना कोई इधर भाग सकता है कोई उधर भाग सकता है, और जिनको पता चल जाता था वो तो भाग जाते थे, तो वो कहां घुस जाते थे, वहीं कोठरी होती थी किचन के पीछे एक छोटी गैलरी सी, उसके पीछे घुस जाते थे, वहां कोयले रखे थे, कोयले की बोरियां पड़ी होती थी उसके पीछे घुस जाते थे, ताकि वास्तव में दादी को तो पता चलता था सब, दादी पीछे नहीं जाते थे, लेकिन जो उनके सामने आते थे तो उनसे दादी जी कहते थे आप सब्जी बना रहे ना थोड़ी मुझे भी लेके आना टेस्ट कराना कैसी बनाते हो आप, अच्छी बनाते हो खराब बनाते हो। तो दादियों का माना जो एक पालना का जो संस्कार है, जैसे माँ अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती है, तो उन दादियों की जो ये यादें हैं सुनहरी यादें हैं, ये भी वास्तव में जीवन को उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए अनेकों सिखा के गई हम सबको। फिर सदा ही दादी एक नामी रहे। उनके देखो बाबा की सेवा के लिए कभी मना नहीं किया और ना ही किसी को वो मना करने के लिए देते थे। कोई भी अगर छोटी सी सेवा होती थी तो सेवा के लिए दादी जी ऐसे कहते कि सेवा के लिए मना नहीं करो, किसकी सेवा, भगवान की सेवा है। अर्थात उनकी सेवा में ही सब कुछ समाया हुआ था। उन्होंने कभी ये नहीं संकल्प किया मैं ये सेवा छोड़ के और मुरली सुनने जाऊं, ये सेवा छोड़ के मैं योग करने जाऊं या ये सेवा करके कहीं। हमने कभी दादी को बाहर जाते भी नहीं देखा, घूमने कभी इधर से शांति मना बरूर भी कभी नहीं देखा। ज्ञान सोवरे कभी दादी एक बार गई है, सिर्फ केवल उसमें बताया है वर्णन में, जब ज्ञान सोवर के किचन का उद्घाटन था उसी समय दादी एक बार गई। अदरवाइज उन्होंने एक ही स्थान पर जो भी भगवान की आज्ञा मिली उसी में सारा जीवन अर्पित कर दिया। हाँ, बाबा किस में उनको लेके आते थे, बाबा स्वयं याद करते थे। ओम शांति भवन में एक वीडियो है, यूट्यूब पर एक वीडियो है जिसमें बाबा उनको दादी को गले से मिल रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो स्वयं दादी को ऐसे बाबा बुलाते थे, ओम शांति।